उपस्थित लोग परमेश्वरजनों तथा भक्तिमती माताओं, कल राज गए दिन और आज ये दो दिन आप लोगों को विरह का दिन है, इसलिए विरह का ये महापुरुष के कथा श्रवण करने के आए, वो महापुरुष तो है नहीं, तो क्या कौन बैठ गया है हमारे गुरु जी के पास, तो इसीलिए आप लोग कथा सुनोगे भी सुनाई नहीं पड़ेगा ना, सुनने पर भी सुनाई नहीं पड़ेगा, ये भी बैठे रहे ना, सत्संग में बैठे रहने से फल आए। नाम ही है उनका गुरु शरण, गुरु के शरण में जाना है नहीं बात, चलो गुरु जी कहीं भी हो शरण तो है ना, अब ये गुरु जी जगन्नाथपुरी में हो कि द्वारकाधीश में हो कहीं भी हो शरण तो होगा ना। तो देखिए गीता में सातवां अध्याय में पहला श्लोक आता है, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम हम यथा ज्ञास्यसि तस्लिणु। आनंद कंद विश्वबंज सर्वांतरदामी सर्वेश्वर, भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे कुंती नंदन, हे मेरे प्यारे भाई प्रीतानंदन पार्थ, तो सुन। बोले क्या कहना चाहते हो? तो मैया आसक्त मना भव, तुम मुझ में चित्त को आसक्त वाला बन, मन को मेरे में आसक्त बना। देखो भगवान कहते आसक्त बना मेरे में मन को, और क्या कहना चाहते? योगम झुंझन, मेरे से योग जोड़, और क्या करना चाहते हो? मेरा आश्रय ले, मदाश्रय, ऐसे क्या होगा? इसे संशय रहित हो जाएगा, असंशयम, संशय रहित होकर क्या करेगा? मेरे को जानेगा। जब तक संशय है तब तक मेरे को जानने, संशय रहित हो जाएगा और मेरे को जानेगा। असंशयम कैसे जानेंगे? तुमको समग्रम, व्यापक रूप में मेरे को जानेगा। तो भगवान ने एक ही श्लोक में साध्य साधनों का स्वरूप निरूपण किया, साध्य और साधन, जिसको जान लेने के बाद संसार में जानने का अवशेष नहीं रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। जगत्वा नेह भूय अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ज्ञातुम यज्ञम गियम, ज्ञातव्यम गेम गियम ज्ञातव्यम, जो जानने योग्य है उसको जानेगा। तो संसार में आप जानने का शेष बाकी नहीं रहेगा। बस अब सवाल यह है, भगवान कहते चित्त को मेरे में आसक्त बनाओ, तो अर्जुन को चित्त तो भगवान में आसक्त है ही है कि नहीं है? तो भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे लिए कह रहे हैं, तो प्रश्न हमारे तरफ से अर्जुन करते हैं, याद रखना। प्रश्न जहां भी गीता में है ना, प्रश्न जीवों के तरफ से ईश्वर के पास पहुंचाया, हमारे तरफ से प्रश्न किया गया। क्या प्रश्न किया? मैं आसक्त, मुझ में चित्त को आसक्त बना। तो हम भगवान से पूछते हैं, आप में चित्त को आसक्त कैसे बनावे? भगवान ने पूछा, क्यों? आसक्त बनाने में आपत्ति क्या है? तो जीव कहते हैं, हमारा चित्त तो अनादिकाल से संसार के विषयों में आसक्त बन करके बैठा है, हमारे चित्त किसमें है? अनादिकाल से आपने अनादि अनादिकाल जन्म जन्मांतर से ही आसक्त बन करके बैठा है। किसमें? संसार में, विषयों में आसक्त बन करके बैठा है। आप वहां से हटाने पर भी, हटाने के बाद भी तो अपना आसक्त बनाया जाएगा। संसार से हटेगा तो अपना भगवान चित्त आसक्त बनेगा, पर वहां से हटता ही नहीं, आसक्त कैसे बनावे? विषयों से चित्त आसक्ति को हटा नहीं सकता, वैसे चिपके हुए हैं पेबिकल के गोंद के जैसे। पेबिकल के गोंद देखा गया वो कैसा होता है? पेबिकल पेबिकल जैसे पेबिकल होता है ना, चिपका देता है एक दूसरे से, वहां से हटाने की भी टीवी में देखा था ना। क्या समझते हो ये पेबिकल का चिपकाया हुआ है? ये छूटने वाला नहीं है, पानी में डालो सा कहीं भी डालो। ऐसे हमारा विषयों के साथ कैसे चिपका हुआ है? शायद पेबिकल से भी ज्यादा चिपका हुआ है। वो तो इस जमे तो निकल जाएगा, हमारे तो जन्म जन्मांतर से चले आ रहे। देखना पुराणों में कथा सुनते नहीं, अमुक जमा में अमुक था, अमुक जमा में अमुक था, अमुक जन्म में अमुक था, इसके ही संबंध हुआ, ये संबंध हुआ, ये संबंध हुआ। एक जन्म का चिपका हुआ नहीं है। तो जीव प्रश्न करते हमारा चित्त किसमें चिपका हुआ है? संसार में, विषय में। विषय या भ्रम को सराह, ये विषय सच्चा नहीं है। सच्चा होता तो ठीक था, पर विषय कैसा है? जैसे जैसे सुक्ति में चांदी देखते हो ना, सुक्ति को चांदी समझते हो, रस्सी को सफर समझते हो, मरुभूमि को जल समझते हो, आकाश को नीलिका समझते हो, ऐसे ही संसार है, विषय है। देखने भर के लिए है, भ्रांति भ्रममूलक, भ्रम का भ्रांति से पैदा हुए। सुक्ति के चांदी सच्चा है झूठा है? घर का चांदी झूठा समझ कर फेंक दो बाहर। सुक्ति का चांदी झूठा है, घर का चांदी झूठा नहीं है, यह समझ लेना। क्यों? सुक्ति को जो हमने चांदी समझा, भ्रांति से समझा। भ्रम गोसरे, भ्रम का विषय है। तो ऐसे अन्य में अन्य की प्रतीति होना भ्रांति है। अन्य में अन्य की प्रतीति होना, दूसरा में दूसरा की प्रतीति होना भ्रांति है। सुक्ति चांदी नहीं, चांदी सुक्ति नहीं है। परंतु जिस सुक्ति में चांदी नहीं है, उस सुक्ति में हमने चांदी को देखा, इसीलिए चांदी मिथ्या है। ऐसे ही जिस आत्मा में हम जगत को देख रहे हैं ना, आत्मा नाम से बीजानिया दयाम अस्मृति पुरुष किमिच्छन कश्य कामाया शरीर मन सौंदर्य। तो आप लोग पंचोदशी सुना है ना, पंचोदशी में आया है ये श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद का पंचोदशी कांड ने इस उसमें पंचोदशी में लिखा है। इसके ऊपर 300 श्लोक है शायद। तो सुक्ति अज्ञान तो यथा रजत विभ्रम है। सुक्ति के अज्ञान से जैसे सुक्ति में चांदी का विभ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है, वो भ्रांति में भी क्या हो जाता है? आसक्ति हो जाती है, राग हो जाता है। होता है कि नहीं? कब तक ये राग रहेगा? सुक्ति अज्ञान होता है, जब तक सुक्ति का अज्ञान है तब तक वो सुक्ति को हम चांदी समझ करके, सुक्ति समझ रहे ना, सीपी सीपी सुक्ति कहते सीपी को। बहुत से आदमी सुक्ति नहीं समझते, सीपी समझते ना, नदियों में होता है वो। हमारे काशी में एक बार शास्त्रार्थ हुआ, बड़े बड़े पंडित आया, रामनगर के राजा के वहां बड़े बड़े पंडित थे। तो उसमें कुछ पंडित ऐसा था मिथ्यावादी को, मिथ्या को सिद्ध करने का है, जो मिथ्या वस्तु है ना उसको सत्य सिद्ध करने का, और कूसा सत्य को सत्य के रूप में प्रय करने का, प्रतिपादन करने का। तो शास्त्रार्थ हुआ बहुत जोरदार, वहां कुछ पंडित इतना तर्कवादी थे, सूक्ति में जो चांदिया सच्चा सिद्ध कर दिया, इतना तार्किक था, सिद्ध कर दिया। तो राजा के पास पहुंचा इनाम देने के लिए, बोले महाराज ये पंडित जीत गया। क्या जीत गया? और सूक्ति में चांदी को सच्चा सिद्ध कर दिया, मिथ्या जगत को सच्चा सिद्ध कर दिया। अच्छा, तो पंडित जी आप तो बड़े विद्वान है, बड़े तार्किक है, एक काम कीजिए, हमारे नगर में जितना नदी नाला में सीपियां है आप उठा करके ले जाइए। क्यों? आपने सच्चा सिद्ध कर दिया ना, किसको किसको सिद्ध किया? सीपी को चांदी के रूप में तर्क के द्वारा सिद्ध कर दिया। अब आपको इनाम यही है हमारे राज्य में, क्या जितना सीपी है ना, का पंडित को क्या मिला? ऐसे ही जब तक अज्ञान है तब तक सीपी को हम क्या समझेंगे? चांदी समझेंगे। सुक्तिर अज्ञान तो रजत विभ्रम है, रजत की भ्रांति में, रजत की सत्यता में तब तक हमारी बुद्धि बनी रहेगी, और जब तक अज्ञान नहीं हटेगा, अज्ञान से भ्रांति होती है ना, सुक्ति के अज्ञान से भ्रांति हुई है, तो सुक्ति के ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होगी। जिसके अज्ञान से जो भासता है उसके ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, याद रखना। ऐसे आत्मा की आत्मज्ञान तो प्रीति विषय धर्म को सरे, आत्मा के अज्ञान से जगत भास रहा है, तो जगत सत्य है कि मिथ्या है? क्या होगा? अरे बोलिए ना, आत्मा के जैसे सीपी के अज्ञान से जगत, सीपी के अज्ञान से चांदी भास रहा है, चांदी मिथ्या है, ऐसे आत्मा के अज्ञान से जब जगत भास रहा है, जगत मिथ्या होगा कि नहीं होगा? आत्मा के अज्ञान से जगत भास रहा है, दिखता है, और ये आत्मा के ज्ञान से ही जगत की भ्रांति की निवृत्ति होगी। तो आप कहोगे कि भाई जगत की निवृत्ति होगी, जगत सच्चा तो दिखता है, मिथ्या कहाँ है? जगत सच्चा है, मिथ्या है, हमारे मिथ्या की परिभाषा समझ लेना पहले। वेदांत शास्त्र हुआ है, मिथ्या कहते क्या? जो वस्तु जैसा नहीं है उसको ऐसा समझना, और जहां नहीं है वहां समझना। अनिवार्य चांदी तुम्हारे घर में है सत्य है, परंतु सुक्ति में देखोगे वो मिथ्या होगा। ऐसे जगत जहां नहीं है वहां देख रहे हो, जहां है वहां नहीं देख रहे हो। जगत कहां नहीं है? भगवान कहते मैया मई मया तथा मिजम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न समस्तानी सर्वभूतानी न सम तिशु अवस्थे न समस्तानी भूतानी वैश्य में जगत वैश्य रम। ये सारे संसार जो है जहां नहीं है वहां तो देख रहा है। आत्मा ज्ञानात्, आत्मा के ज्ञान से जगत भास रहा है, संसार भास रहा है, और आत्मा के ज्ञान से संसार की निवृत्ति होगी आत्मा के ज्ञान से। तो जगत की निवृत्ति अभी तक नहीं हुई किसी का, जगत भास रहा है, जगत माया का कार्य है, याद रखना। जैसे जादूगर का खेल देखते हो कि नहीं? जादूगर का खेल तब तक सच्चा रहता है जब तक जादू है। जादूगर के पास जो जादू है ना, तमाशा दिखाने की शक्ति है, वो पर्दा पर आपको सच्चा दिखाएगा सब, परंतु जब खेल समाप्त होता है तो जादू बोरिया बिछोना बांध करके जाता है, पोटला बांध करके जाता है, और बोलते पैसा खत्म, खेल खत्म, चलो। वो एक बार हमने पेपर में पढ़ा था, कलकत्ता के एक जादूगर था, सरकार क्या नाम उनका, पीसी सरकार, पीसी सरकार, अच्छा, पीसी सरकार बिला विदेश गया था, लंदन गया था जादू दिखाने के लिए, सबसे जादू दिखाने के लिए, सब देश विदेश के सब बड़े बड़े जो है ना राजदूत इकट्ठा हो गया पीसी सरकार का जादू देखने के लिए। 8 बजे से 9 बजे तक जादू दिखाएगा, तो 8 बज गया अभी तक आया नहीं, तो इंडियन को गाली देने लगा, कहते इनको समय का ज्ञान नहीं है कि इसको भारतीयों को समय के अनुसार आना नहीं जानता, समय तो पता ही नहीं, उनको गाली देने लगा। तो इतना में जादूगर लंगड़ाता लंगड़ाता आ गया, तो जादू दिखाने के लिए जब स्टेज पर पहुंचा तो सब गाली देने लगा। तो उसने कहा, देखो ठीक है, हम लोग टाइम देखना नहीं जानते, तुम लोग टाइम देखने जानते हो, घड़ी देखो कितना बज रहा है। तो घड़ी पे देखता है जितना टाइम दिया ना 8 बजे, ठीक 8 बजा है, तो तुम लोग घड़ी देखने नहीं जानते, घड़ी निकालो। कह सबसे घड़ी ले लिया, ले लेकर के पत्थर से चूर चूर कर दिया, कहते हे हमारे इतना घड़ी है, हमारे ये घड़ी है, हमारे ये क्या कर दिया, ये इंडिया का और गाली देने लगा, घड़ी देखने नहीं जानता है इंडियन वाला, पर इंडिया वाला ने इसका घड़ी के इतना चकनाचूर कर दिया, हाय हाय करने लगा। बाद में कहना, देखो आपने अपना हाथ में घड़ी देखो कितना बाजा है, 8 से 9 तक समय दिया था, 9 बजा कि नहीं बजा, हमारा खेल खत्म हो गया, 1 घंटा का खेल। इतने बड़े बड़े कलाकार भारत में हुआ, तो ये जो खेल देखना, जादूगर का खेल कैसा सच्चा है कि झूठा है? वैसे महा जादूगर परमात्मा है, माया भी है, ईश्वर का नाम भी क्या है, जादूगर है कि नहीं, माया भी, माया भी, महामाया भी है, महामाया भी, तो महा आए इंद्रजाल का है, माया भी कहो, इंद्रजाल कहो, बात एक ही है, जादूगर कहो, ऐसे ही जो संसार है जादूगर का खेल है, जादूगर का वो जादूगर है परमात्मा, परमात्मा अपने माया के द्वारा ये सारा संसार दिखा रहा है, तो जो माया का कार्य होगा मिथ्या होगा, जो जादू दिखा रहा है वो सच्चा है, जो जादू दिखा रहा है ना वो जादू का सच्चा है, पर जिस जादू के द्वारा खेल दिखा रहा है, तुमने जादू देखने जाते हो कि जादू का खेल देखने जाते हो कि जादूगर को देखने जाते हो? हाँ, खेल देखने जाते हो, तो खेल देखते हो ना, किससे खेल दिखा रहा है वो देखते हो, जादूगर किससे दिखा रहा है वो देखते हो? हाँ, जादूगर को देखने नहीं जाते हो, जादूगर को देखना है बाजार में खड़े होकर के भाजी खरीदता है उस समय देखो, और जादूगर का खेल देखना खेलता उस समय खेल ही देखो, कार्य देखो, कारण तो जिस द्वारा वो दिखा रहा है वो देखते हो कभी? ये जादू से खेल दिखा रहा है वो जादू देखते हैं, ऐसे महामायावी के माया देखते हो, माया का कार्य देखते हो, मायावी को देखते हो, तीनों में से किसको देखते हो तुम? कार्य देखते हो, ये संसार जो है मायावी के माया का कार्य है, न तुम माया देखते हो न मायावी को देखते हो, मायावी को देखना चाहते हो, खेल में तुम मस्त होते हो, मायावी का जो खेल है, संसार बनाया, संसार रक्षा कर रहा है, संसार को संहार कर रहा है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो संसार के है ना, ये माया के द्वारा कर रहा है जादूगर का, ऐसे मायावी के माया को, माया के कार्य को तुम देख करके आसक्त हो जाते हो, और दुनिया शास्त्रकार कहती है इसमें आसक्त मत होना, मैं यहां आसक्त हूं, मुझ में आसक्त होना, मेरी माया में आसक्त नहीं होना, मेरे माया के कार्य में आसक्त नहीं होना, इसमें आसक्त होना, मुझ में आसक्त होना। तो हम कहते हैं, हम तर्क देते, आप में आसक्त कैसे हो गए? क्यों हमारे आपके कार्य में हम आसक्त हो गए? तो हम तो कार्य देखने के भी आए हैं, अरे जादूगर के खेल में आसक्त होते, जादूगर में आसक्त होते हो, तो खेल में आसक्त होते तो जादूगर में तो आसक्त नहीं होते, जादूगर काम करे तरफ देखो, हमारे तरफ देखो तो देखोगे? हैं, जादूगर के हमारे तरफ देखो, तो तुम कहोगे कि यार हमने पैसा देकर तुमको देखने नहीं आया, हम तो जादू तुम्हारा खेल देखने आया है। ऐसे संसार को देखने आए हो और भगवान को देखने आए हो? ले भगवान को देखने आए हो, देखा अभी भगवान को देखने आया। भगवान जो आपने माया के द्वारा सोना का टक्सल खोल देगा तो उसमें जाओगे कि भगवान को देखने जाओगे? टक्सल खोल दिया भगवान ने रास्ता में सोने का सिक्कों का, अब तुम उसमें जाओगे किसने सिक्का का टक्सल खोला उसको देखोगे? उसको पकड़ने न गठरी बांधोगे, वो गठरी बांध करके घर ले जाओगे। हमारे लड़के की शादी करना, दुकान खोलना, फैक्ट्री खोलना, हमको इसकी जरूरत है, उसका जरूरत नहीं है। ऐसे भगवान बार बार कहते मैया सकता है, तो जीव तर्क देता है। आप में आसक्त को, आसक्त चित्त को कैसे बनावे? हमारा चित्त, हमारा मन अनादिकाल से संसार के विषयों में, घर गृहस्थी में, गाड़ी घोड़ा में, परिवार में, बाल बच्चों में आसक्त बन करके बैठा है। वहां से हटाने पर भी नहीं हटता, वहां से हटाए तब न इधर लगावे, संसार से हटावे तब न परमार्थ में लगावे। संसार को हटा नहीं, हटता नहीं तो परमात्मा में कैसे लगावे, कैसे लगावे? ये पूछते हैं जीव। आप में लगाने के लिए संसार से हटना से मन तो एक ही है, इधर लगाओ सा इधर लगाओ, संसार के लगाए परमार्थ छूटेगा, परमार्थ में लगाओ संसार छूटेगा। अभी हमारा मन किधर लगा है? परमार्थ में छूट गया कि नहीं छूट गया? भलाई यहां बैठे हैं बोले कि हमारे परमार्थ में है, वास्तव में संसार में ही है। तो संसार आसक्त जीव संसार में चित्त को लगाया, परमार्थ के तरफ जाना नहीं चाहते चित्त। हमारा मन तो संसार में विषय में आसक्त बन करके बैठा, हम क्या करें अभी? तो भगवान के कहा ठीक है, तुम्हारा चित्त संसार में आसक्त बन करके बैठ गया है, मान लिया, परंतु यदि लगाना चाहो तो लगेगा। जिसने जिसने चाहा उसने उसने लगाया, ध्रुव ने लगाया, प्रहलाद ने लगाया, चैतन्य प्रभु ने लगाया, वल्लभ आचार्य ने लगाया, लगाया कि नहीं? तो उनको लग सकता, हमारा क्यों नहीं लगता है? ध्रुव का लगा कैसे, प्रहलाद का लगा कैसे, मीराबाई का लगा कैसे, आचार्यों को कैसे लगा? जो उन लगा वो लगा सकते, हम क्यों नहीं लगा सकते? हम लगाना नहीं चाहते, उधर लगाना जाना, फिर हमारा समय हो गया, पर चलो सकते एक मिनट में बदल जाएगा। तो भगवान कहते देखो तुम जीव हो, जीव के अंदर हमने एक शक्ति दिया है, वो शक्ति है विवेक। एक विवेक शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी नहीं? तुम नित्य नित्य वस्तु का विवेक कर सकते हो कि नहीं? सदासद विवेक कर सकते हो कि नहीं? धर्म अधर्म का विवेक कर सकते हो कि नहीं? हाँ कर सकते। तो जहां विवेक होता है, विवेक एक मस्त बड़ा साधन है, याद रखना। आरुष्य विवेकश्रम तीव्र वैराग्य खड़गिना तितिक्षा वर्म झुक्तेश प्रतिजोगी न दृश्यते। भगवान भाष्यकार लिखते हैं आरुष्य विवेकाश्रम, विवेक के अंदर जो विवेक है ये क्या है? घोड़ा है। यदि एक योद्धा को युद्ध भूमि में लड़ाई के मैदान में जाना होता है तो उसको क्या चाहिए? एक शिक्षित घोड़ा चाहिए, तीखी तलवार चाहिए, तलवार और क्या चाहिए? कवच चाहिए, कवच, मजबूत कवच, जैसे राणा प्रताप का कवच अभी भी देखा था कि नहीं, लड़ाई के मैदान में जो गया ना। और उनका घोड़ा कैसा था? चेतक, चेतक जैसे घोड़ा चाहिए, राणा प्रताप के जैसे कवच चाहिए, समझे गए नहीं? कवच, कवच माने रक्षा करना, करने के बाद जो कवच था, करने के बाद तब कवच जब तक है तब तक उसको कोई मार नहीं सकता था, इसीलिए छल करके उसके कवच को हरण कर लिया भगवान ने। हाँ, कवच और क्या चाहिए? कवच चाहिए और घोड़ा चाहिए और तलवार चाहिए। चेतक के जैसे घोड़ा पर सवार उड़ गया, गंगा जल जैसे तलवार चाहिए, गंगा तलवार उनका, उसका तलवार का नाम था गंगा कवच, प्रताप, राणा प्रताप का। ये तीन वस्तु लेकर के जलराय के मैदान में जाता है तो उसके प्रतियोगी दुश्मन सामने नहीं खड़ा होता है, प्रतियोगी को दुश्मन को भागना पड़ता है। ऐसे संसार रूपी जो लड़ाई का मैदान है, ये संसार क्या है? तुम 24 घंटा लड़ते हो कि नहीं लड़ते हो, तुमको पता नहीं? लड़ते लड़ते इतना अभ्यास हो गया, लड़ाई नहीं दिखता तुमको, लड़ाई नहीं दिखता। 24 घंटा लड़ना पड़ता है गृहस्थ आश्रम में, परंतु भी लड़ाई नहीं दिखता है, क्यों? हजम हो जाता है। हाँ जी बाप, 24 घंटा राग द्वेष ईर्ष्या हर्ष शोक, कितना कितना कठिनाई, रोग, स्वस्थ अस्पताल भरा पड़ा, किसी भी अस्पताल में जाओ वो खटिया के नीचे रोगी रख दिया है, खटिया के नीचे, ऊपर जगह नहीं है। बहुत सी ऐसी आती है ना, साधारण प्राइवेट की बात छोड़ दो, प्राइवेट में भी जगह नहीं मिलता है, वहां भी सिफारिश लेकर जाओ। 24 घंटा मनुष्य लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे संसार रूपी मैदान में जब तुम जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एक विवेकी घोड़ा, एक घोड़ा चाहिए, मजबूत घोड़ा। वो घोड़ा कौन है? विवेक रूपी घोड़ा। और उड़ीस्य विवेकाश्रम, विवेक रूपी घोड़ा पर चढ़ो, तीव्र वैराग्य रूपी खड़ग हाथ में लो और सहन शक्ति रूपी कवच पहनो, तब तुम संसार में रह सकते हो। संसार में रहने के लिए सहन शक्ति रूपी कवच चाहिए, नहीं तो तुम रहने से बात बात में झंझला, जैसे हम बोले ना, बात बात में गुस्सा करते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, क्यों? डायबिटीज वाला बात बात में गुस्सा करता है, गुस्सा तो करता नहीं पर दूसरा को ऐसा दिखता है, क्यों? खिट-खिट स्वभाव हो जाता है ना, रोग भूखते 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 रोगी बनते 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 क्या हो जाता है? चिड़चिड़ाहट हो जाता है। तो दूसरा चिड़चिड़ा नाट होने पर भी दूसरा को लगता है कि ऐसा हो गया, ऐसा करता है, इसीलिए सहन शक्ति कवच होना चाहिए। ये तीनों वस्तु लेकर तुम संसार में रह सकते हो। ऐसे विवेक रूपी अश्व को अश्व चढ़ गया तुमने, तुम्हारे पास विवेक है, काटो शत्रुओं को, दुश्मनों को, मानी बात अलग करो। नित्य नित्य वस्तु विवेक, सरसत विवेक, जड़ चेतन विवेक, धर्म अधर्म का विवेक करते करते तुम आगे बढ़ो, तो तुम्हारे पास एक विवेक शक्ति है। जिसके पास विवेक रूपी शक्ति है, हाँ, कोई संसार के तरफ से अपने मन को बुद्धि को हटा करके परमात्मा में लगा सकता है। विवेक के तुमने क्या किया? सद असद विवेक करो, सद असद विवेक करो, असद वस्तु से अपने बुद्धि को हटा करके सद वस्तु की तरफ ले चलो, अनित्य से अपने बुद्धि को हटा करके नित्य की तरफ ले चलो, अधर्म के तरफ हटा करके धर्म के तरफ ले चलो, ले जा सकते हो कि नहीं? हाँ, विवेक विवेक सहन शक्ति के बाद में आया, विवेक विवेक के बाद में आएगा, पहले विवेक रखो। विवेक एक मस्त बड़ा शक्ति है, याद रखना, परमात्मा में चलोगे तो विवेक के बाद वैराग्य आएगा, इससे पहले वैराग्य आने वाला नहीं संसार से, याद रखना। तुम्हें वैराग्य करके भट कर जाओगे, भट करके फिर भागे आओगे। जैसे समझो दो तरफ दो वस्तु है, कल्पना करो, एक तरफ ऐसे दृष्टांत समझो कि एक मकान है पुराना, जीर्ण शीर्ण झोपड़ी है, और एक आधुनिक ढंग से बना हुआ नया, जिसमें बाथरूम भी है, लेट्रिन भी है, रसोईघर भी है, बेडरूम भी है, पंखा भी है, और एसी भी है, सब कुछ सुविधाएं हैं। और एक में फटा पुराना झोपड़ी है, मच्छर है, मक्खी है, अनिवार्य कीड़े मकोड़े है, डांस है, सब है, और चूता है, दो तरफ दो मकान है। आपको यदि बोले दोनों मकानों से कौन सा मकान लोगे तो क्या करोगे, कौन सा लोगे, झोपड़ी नया वाला? हाँ देखा राजा साहब, नया वाला मकान लेना है। दोनों में से आप चुनोगे बढ़िया मकान, अभी आधुनिक ढंग से बनाया हुआ जो सब प्रकार के सुविधाओं से युक्त जो मकान है, उसको लेने के लिए तुमको बोलोगे भाई हमको ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। क्यों? इसमें गंदगी है, टूटा है, फूटा है, मच्छर है, मक्खी है, कॉकरोच है, इसीलिए अनेक प्रकार के कष्टों का साधन है। तो दो तरफ दो वस्तु है तो आप आधुनिक मकान लोगे। तो किसने बोला तुमको ये मकान बढ़िया है ये घटिया है? तुम्हारा विवेक ने बोला कि नहीं बोला? तुम्हारा विवेक ही बोला ये बढ़िया है, बढ़िया रहोगे, सुख से रहोगे, शांति से रहोगे, आराम से रहोगे, और ये लोगे तो हैरान हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार समझ लेना, नया मकान के जगह में परमात्मा को और टूटी पड़ी जगह के संसार को। ये संसार कैसा है, टूटी फूटी है कि नहीं, पुराना है कि नहीं? अनादिकाल से संसार चले आ रहा है, अनादिकाल से ये संसार अनादि है। अनादि होने से पुराना है, जीर्ण अशीर्ण है, अनादि अयम संसार है। ये संसार अनादि है, टूटा है, फूटा है, जीर्ण है, शीर्ण है, और परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अधरम मधुरम बदनम मधुरम बोलते हो ना, सब मधुर ही मधुर ही है। तो आप मधुर मधुर चाहोगे कि टूटा फूटा में जाओगे, कौन सा चाहिए? टूटा फूटा में, हाँ वहां ऐसे ऊपर की तरफ फीट करोगे तो पानी और ऊपर से नीचे आएगा, तो चाहोगे? ये दोनों में से अच्छा लेने वाला कौन है? परमात्मा की तरफ जाओगे, नया मकान की तरफ जाओगे तो परमात्मा मिलेगा, और पुराने की तरफ जाओगे तो संसार मिलेगा। तो संसार कैसा है, नाना प्रकार के राग द्वेष से भरा पड़ा है। संसार नाना प्रकार के राग द्वेष से भरा पड़ा है, नहीं सुख दुख से भरा पड़ा है, रोग स्वास्थ्य से भरा पड़ा है, रोगी रोगी रोगी, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत रोगी रोग। कौन सा रोग? हम तो स्वस्थ है, हमारे पास रोग कहाँ है? कोई ऐसा बोलेगा तो क्या बोलोगे? अरे यार कोई रोग नहीं है, भव रोग तो तुम्हारे पीछे लगा है, और कोई रोग नहीं है, परंतु भव रोग तो सबसे लगाना है। को जीत कर होगा भव साधो, सबसे बड़ा रोग कौन है? सबसे बड़ा रोग है भव रोग, लंबा चढ़ा अनंत जन्मों से आ रहा, पीछे पीछे चला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये क्या है? भव रोग है। जेल खाना में जेलर भी रहता है, कैदी भी रहता है, दोनों में से कौन अच्छा है? जेल का नाम है, कैदी भी रहते हैं, डंडा खाता रहता है, और डंडा मारने वाला भी रहता है। तो डंडा मारने वाला भी जेल का नाम रहता है, और डंडा खाने वाला भी, दोनों से कौन अच्छा है? किसको रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए? डंडा मारने के लिए भगवान आते, डंडा खाने के लिए नहीं, है नहीं बात? तो दोनों में से एक जो मकान है आधुनिक ढंग के बना हुआ है, और एक जो प्राचीन है, तो प्राचीन हुआ संसार अनादिकाल से चले आ रहे, अनादिम लोक व्यवहार है। ये लोक व्यवहार में राग द्वेष ईर्ष्या हर्ष शोक मान अपमान लाभ हानि जय पराजय के बीच में हम रह रहे, और एक है ये सबसे मुक्त है। ये विवेक आपने किया तो विवेक करके किधर जाओगे? परमार्थ की तरफ, परमार्थ की तरफ, ईश्वर की तरफ जाओगे। ईश्वर की तरफ जाओगे तो क्या बन जाओगे? सुखी हो जाओगे, और संसार की तरफ आओगे तो दुखी हो जाओगे। आने बात इसीलिए संसार को क्या प्रवृत्ति और निवृत्ति, प्रवृत्ति दुखाय निवृत्ति सुखाय, याद रखना। भगवान भाष्यकार गीता के भाष्य में अध्यास भाषा में स्पष्ट लिख दिया है प्रवृत्ति दुखाय निवृत्ति सुखाय। निवृत्ति में सुख है, प्रवृत्ति में दुख है। जैसे इच्छा तथा करो, जैसा इच्छा हो ऐसा करो। दुख के जाना है, दुख प्राप्त करना है तो प्रवृत्ति में जाओ, और सुख चाहते हो निवृत्ति है। अनादि रहे हम लोग का व्यवहार, अनादि काल से मनुष्य जो है ना संसार के तहत प्रवृत्ति, और इसीलिए संसार में मनुष्य जो दुखी होता है और कुछ नहीं है। हाँ, वो प्रवृत्ति में यदि तुम विवेक रखोगे, विवेक से आना तो सुखी हो जाओगे। इसमें भी प्रवृत्ति जो मार्ग है संसार मार्ग है, तो इसमें भी विवेक सुखी होता है, अविवेकी दुखी हो जाता है। वो कैसे, जैसे देखो एक गुड़ का ढेला है, गुड़ का ढेला पिघला हुआ गुड़, तो पिघला हुआ गुड़ को खाने के लिए दो मक्खी आया, एक का नाम चतुर्मक्खी, एक का नाम अधीर मक्खी। जंगल से आया, जंगल में बरसात नहीं हुई, बरसात जब नहीं हुई तो अकाल पड़ा है, पेड़ पौधे सूख गया है, फूल नहीं है, मधु नहीं है। तो क्योंकि मक्खी जो है ना मधु आहरण करते हैं ना, मधुपान करते हैं पुष्प का पूरा। तो जंगल से शहर में आया, तो शहर में आया एक दुकान के सामने देखा पिघला हुआ गुड़ का अंडा, देखा तो खुश हो गया उसमें दोनों। अब पेट भर के खाने को मिलेगा, पेट भर के खाने को मिलेगा। जाकर देख करके अधीर मक्खी जो थी वो बीस गुड़ के बीच में जाकर बैठ गया, तो बीस गुड़ में बैठा तो पेट भर के तो खाया, पर उड़ने की जब चिंता हुई तो पंखा लपट गया। और चतुर्मक्खी जो थी उसने कहा हमको गुड़ भी खाना, गांव में भी जाना है वापस, तो क्या करना है, तो किनारे में बैठा छोटे छोटे टांगों से थोड़ा थोड़ा गुड़ लाकर खाता है और पेट भर करके गांव में चला जाता है। तो ऐसे संसार के विषय कैसा है, पिघला हुआ गुड़ है, और पिघला हुआ गुड़ में कौन बैठेगा, आ चाहिए 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 चाहिए, अरे चाहिए चाहिए वाला जो अधीर है ना, वो धीरज जिसका नहीं रखेगा तो जाकर विषयों के बीच में बैठ जाएगा और क्या करेगा, ऐसे आसक्त होगा, आसक्त होगा बेटा बेटी धन दौलत फलाना फलाना साला संबंधी शत्रु मित्र दुश्मन, ऐसे चिपक जाएगा। वहां से निकलना महाराज, संसार से निकलना चाहता हूं, निकल नहीं पाता हूं। अरे क्यों निकल पाते नहीं, कहीं ऐसा जाल में फंसा हुआ हूं मक्खी के जाल में, वो जाना चाहे निकलना चाहे निकल पाते नहीं, निकलना चाहे तो भी निकल नहीं पाते। और दूसरा जो है विवेकी मनुष्य संसार में रहेगा, सब विषयों के साथ संबंध करेगा, पर तो किसी में भी आसक्त नहीं होगा, फंसेगा नहीं। तो ऐसे विवेकी पुरुष संसार में रहेगा, तो संसार में रहने पर भी वो असंसारी बन करके रहेगा। जैसे नदी में पानी, नदी के पानी में जहाज रहता है अथवा नौका रहता है, तो नौका में पानी नहीं आता है, नौका कहाँ रहता है, पानी में, परंतु तो नौका में पानी आता है, तो जैसे नौका में पानी नहीं आता है, नौका पानी में रहता है, इसी बार संसार में तुम रहो, संसार तुम्हारे अंदर नहीं आने पावे। अगर संसार आएगा तो नौका डूब जाएगा, और संसार में रहोगे कैसे रहोगे, बेचे पानी में नौका रहता है अनिवार्य। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैया सक्त मना भव, हे पार्थ हे प्रीतानंदन मेरे प्यारे भाई अर्जुन, तो मुझ में आसक्त सत्य वाला बन। कैसे बनेंगे तो कल बताएंगे, याद हो गया पूरा। ओ